असल में जब मैं आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब आपसे बात करते हुए जब मैंने आपका नाम आदित्य राजवंश लिया तो मेरे पापा ने सुन लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आदित्य राजवंश कौन है। जब मैंने उन्हें बताया कि आप बिजनेसमैन धर्मपाल राजवंश के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा, ये वही है ना? और फिर उन्होंने आपकी नाना का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पुरानी घटना बताई। उन्होंने कहा कि जब वे एक दवा की दुकान में काम करते थे, तब एक औरत वहां स्लो पॉइजन खरीदने आई थी। दुकान का मालिक उस घटना के बारे में पूरी तरह जानता था। उसी जानकारी के आधार पर मैंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन गहराई से की, तो पता चला कि वो औरत अनीता राजवंशी थी। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बता सकते हो? तुम्हारे पापा को इतना सब कुछ कैसे मालूम हुआ? वो आदमी बोला, बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं अभी अपने पापा से आपकी बात करवा सकता हूँ। उसने अपने पिता को कॉल किया और फ़ोन आदित्य को पकड़ा दिया। फ़ोन पर उस आदमी के पिता ने कहना शुरू किया, बात यह है बेटा कि मैं एक दवा की दुकान पर नौकरी करता था। वहाँ कभी कभी एक औरत आती थी जो हमेशा दुकान के मालिक से ही बात करती थी। उसने कभी किसी और से कोई बातचीत नहीं की। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या लेकर जाती थी। एक दिन वो औरत आई और बोली, शायद आज आखिरी बार आई हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुकान मालिक ने पूछा, काम हो गया क्या? वो औरत मुस्कुराई और बोली, बस समझो होने ही वाला है। वो बच्चा तो अब दूध भी नहीं पी रहा, वही बच्चा मेरा आखिरी सहारा है। अगर वो बच्चा जिंदा रहा तभी मेरा काम होगा। उसने एक छोटा पैकेट दुकान मालिक को दिया और बोली, काम हो जाने के बाद और मिलेंगे। वो औरत चली गई। उसने जो दवाई ली थी उसके बारे में मैं जानना चाहता था। मैंने देखा कि उसने जिस जगह से दवाई ली वहाँ एक और शीशी भी पड़ी थी जिसमें जहर था। तभी मुझे शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया। धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा। मैं पुलिस के पास जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी आपकी माँ की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। ऐसे में अगर मैं पुलिस के पास जाता भी तो क्या सबूत देता? इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज इतने सालों बाद मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। आदित्य ने गंभीरता से पूछा, क्या आप ये सब पुलिस के सामने कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं पूरी सच्चाई बयान कर सकता हूँ। क्या आपके पास उस दुकान के मालिक का पता है? वो आदमी अब कहाँ रहता है? दुकान तो उसने अब बंद कर दी होगी, लेकिन वो कहाँ रहता है इसका पता मुझे है। तो ठीक है, आप उसका पूरा एड्रेस मुझे नोट करवा दीजिए। अब वही आदमी बताएगा कि पूरी सच्चाई क्या है। अनीता के खिलाफ वही सबसे बड़ा सबूत होगा और मेरी माँ को आखिरकार इंसाफ मिलेगा। आदित्य ने फिर उस व्यक्ति से कहा, अनीता राजवंश के खिलाफ वैसे भी हमारे पास कई सबूत हैं, बहुत जल्द उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मगर हमें अभी कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए। हमारी एक भी गलती से वे लोग चौकन्ने हो सकते हैं। सही कह रहे हो, कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम को आदित्य घर पहुंचा। डिनर में अभी थोड़ा समय था। घर की मेड ने आदित्य से पूछा, सर क्या चाय बना दूं? नहीं, मैं सीधा डिनर ही लूंगा, खाना जल्दी लगा देना, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर लोअर और टी शर्ट पहनकर वो नीचे आ गया। सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। धर्मपाल जी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ आदित्य, आज तुम भी हमारे साथ बैठो। अभी आदित्य बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। फिर वो सबके साथ बात करने लगा। हाँ डैड, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हैं? धर्मपाल जी ने थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा, हाँ, जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी तबीयत की। फोन करके कभी पूछते तक नहीं कि कैसे हैं डैड। अब आपके पास बैठकर पूछ रहा हूँ, और कैसे पूछूं? बेटा ऐसे ही पास बैठा रहो, अच्छा लगता है, नैना ने जानबूझकर चुभने वाले लहजे में कहा। सही बात है, वरना भाई तो हमेशा पीकर ही बैठे रहते हैं। अब नहीं पीऊंगा, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। सचमुच? अधिराज ने ताज्जुब से पूछा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आदित्य का फोन फिर से बजा। वो फोन लेकर साइड में चला गया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए लौट आया। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो भाई, कोई मिल गया है क्या? यही समझो, आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कोई नहीं, बहुत लोग मिल गए हैं, हमें खुशी तब होगी जब कोई एक मिलेगा, वो भी मिल ही जाएगा, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने निशा को फोन किया था, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, अनीता जी ने थोड़े उदास स्वर में कहा। मैं बात करता हूँ निशा से, वो आपका कॉल जरूर उठाएगी। पता नहीं जब से वो लड़की गई है वहां से, पहले तो बात करती थी, अब तो उसने पूरी तरह दूरी बना ली है। अनीता की बात सुनकर आदित्य के मन में तूफान था। उसका मन कर रहा था कि वो सब सच बोल दे, कि यही उसकी करनी का फल है, मगर उसने खुद पर नियंत्रण रखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसका फोन फिर से बजने लगा। दरअसल दोनों बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे। वो साइड में जाकर बच्चों से बात करने लगा। अब सवाल ये उठते हैं, अनीता ने छोटे आदित्य को जहर क्यों नहीं दिया, क्यों छोड़ दिया उसे? क्या वो उसका अपना बेटा था, या क्या उसके बचने से अनीता को कोई फायदा था?